ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 31 पर किसे द्वारा ये त्वं वा इदं सद सदीश भवान ततो अन्यो माया यदात्म पर बुद्धिरियम हि पार्थ यद यस्य जन्म निधनम सदीरीक्षणम च में सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में भगवान कहते हैं वीर्यं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम हे प्रथा पुत्र तुम ये जान लो कि मैं सारे जीवों का मूल बीज हूं। वैदिक वाणी में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये सारी वैदिक सूचना बताती है कि केवल एक ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मायावादी विचारक इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, लेकिन भगवान इस सत्य पर बल देते हैं कि वे सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है जो अचिंत वेदाभेद तत्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु एक परमेश्वर है, फिर भी प्रत्येक वस्तु उनसे भिन्न है। एकत्व तथा भेद अंतर की यही विचारधारा है। यहाँ पर वसुकाल वध अष्टि तर्वो का उदाहरण दिया गया है जिसे समझना आसान है। प्रत्येक वस्तु भूतकाल में विद्यमान है, फिर भी काल की विभिन्न अवस्थाएं हैं, यथा वर्तमान भूत तथा भविष्य, ये तीनों एक हैं। प्रतिदिन हमें काल का अनुभव प्रातः दोपहर तथा संध्या के रूप में होता रहता है, और यद्यपि प्रातः दोपहर से भिन्न है और दोपहर संध्या से भिन्न है, फिर भी उन्हें एक माना जाता है। काल भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इस काल से पृथक रहते हैं। प्रत्येक वस्तु का सजन पालन तथा संहार काल द्वारा होता है, लेकिन भगवान का ना तो आदि है ना अंत, वह नित्य शाश्वत है। प्रत्येक वस्तु वर्तमान भूत तथा भविष्य काल की इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, फिर भी भगवान सदैव वही रहते आए हैं। इस तरह निसंदेह भगवान तथा विराट जगत में अंतर है, किंतु वस्तुतः वे पृथक नहीं है, उन्हें पृथक समझना अविद्या। किंतु असली एकत्व मायावादियों की धारणा के तुल्य नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो ये है कि सारे अंतर भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है जिसमें तना शाखाएं पत्तियां फूल तथा फल की विविधता रहती है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है केशव तुया जगत विचित्र, हे भगवान आपकी सृष्टि विविधता पूर्ण है। ये विविधताएं एक होते हुए भी भिन्न है, यही अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन है। ब्रह्म संहिता में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वह इस प्रकार है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है, उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के प्रधान कारण है। चूंकि भगवान परम कारण है अतः प्रत्येक वस्तु उन्हीं में रहती है, किंतु जब हम उनकी विद्याओं का विचार करते हैं तो पाते हैं एक वस्तु दूसरे से भिन्न है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनकी किस्मों में अंतर होता है। इस प्रसंग में माधवाचार्य सामान्य वृक्ष तथा अग्नि में पड़े वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि दोनों वृक्ष एक हैं, लेकिन काल के कारण वे भिन्न दिखते हैं। काल भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान काल से भिन्न है। फलस्वरूप प्रगत भक्त सुख तथा दुख में अंतर नहीं मानता, जैसे कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है तते अनुकंपां सुशिक्षमानो गुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भक्त तथा कथित दुख स्थिति में होता है तो वह इसे भगवान का उपहार या आशीष मानता है। जब भक्त जीवन की किसी भी स्थिति में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हुआ रहता है, उसे मुक्ति पदे सदाय भाग अर्थात भगवत धाम लौटने का सुपात्र कहा जाता है। दाय भाग शब्द का अर्थ है उत्तराधिकार, पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार जब भक्त द्वैत से रहित होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। ओम अज्ञान तिवरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिचन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवाराय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हे भगवान हे परमेश्वर, ये समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह माया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निसंदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का संबंध बीज तथा वृक्ष और सूक्ष्म कारण और स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चर्चा चल रही है, स्तुतियां हो रही हैं। आज का जो श्लोक है उसमें एक चर्चा आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ भगवान है। इसको कैसे समझा जाएगा? एवरीथिंग इज कृष्णा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी जो है पर्वत के बिगनिंग में ही कोट करते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तुम्हें जान लो कि मैं सारे जीवों का मूल बीज हूं। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम उत्पत्ति वासुदेवम सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभम। वासुदेवम सर्वम इति, इसका क्या अर्थ है? वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है। अर्थात भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं। यहां इसी पर्वत के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही अचिंत भेदाभेद तत्व की चर्चा हुई है। देखने में प्रतीत होता है कि वस्तुएं अलग अलग हैं, भगवान अलग है, जीव अलग है, भौतिक शरीर जो हमने जिसको जो जीव को धारण किए हुए है जिसके अंदर जीव उपस्थित है वो अलग दिखाई देता है, जो सृष्टि हम देखते हैं ये अलग दिखाई देती है। एक जीव को जो शरीर मिला है और दूसरे जीव को जो शरीर मिला है दोनों में भेद दिखाई देता है, दोनों में अंतर दिखाई देता है। और यहां पे क्या चर्चा हो रही है, सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं, अर्थात सब जीवों का मूल बीज मैं हूं। सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान थे और कोई नहीं था, कोई था बिगनिंग में, कोई था और वो है तो बताइए, सृष्टि के आरंभ में कौन था? बहुत ही सुंदर पर्पट है प्रभुपाद का, यहां लिखते हैं कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। गोपाल तापनी उपनिषद अथर्ववेद में कहा गया है यो ब्रह्मानं विदाति पूर्वयो वेदांश गापति स्म कृष्णः। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। इसी परपट में लिखते हैं आगे, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशान नापो नाग्नि अस्मय नेमे जाया पृथ्वी न नक्षत्रादि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। दसवें अध्याय के आठवें श्लोक का परपट अवश्य पढ़िए, बहुत ही सुंदर परपट है, बहुत ही सुंदर बातें कही गई उसके अंदर। इस सृष्टि के प्रारंभ में न केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। ये लिया गया है महाउपनिषद से। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए, अर्थात वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं दसवें अध्याय के इसी श्लोक के अंदर, बिगनिंग में जो श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो, अर्थात सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है, सब कुछ मेरे से ही प्रभु हुआ है। देखने में अलग अलग लगता है, पर आप देखेंगे कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी आप मनुष्य देखते हैं, एक स्थिति है जिसको हम कहते हैं ट्विंस, ट्विंस जो एक से दो बने। अगर आप जो है साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के अंदर, मेडिकल साइंस में, ये गर्भाधान दो बार हो गया है इसलिए ट्विंस हो गए, एक साथ हो गए, या किसी किसी के अंदर एक ही बीज से दो में बट गया तो दो पैदा हो गए, ट्विंस हो गए। अगर गर्भाधान में दो बार गर्भाधान हुआ है तो भी आकृति अलग है, शक्ल अलग मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी, कहलाने को ट्विंस हैं, एक साथ पैदा हुए हैं परंतु दोनों की शक्ल में अंतर होगा। परंतु अगर जो है दोनों एक बीज से दो बने, डिवीजन हो गया है बीच में, होता है ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, क्वाड्रपलेट्स बन जाते हैं, दो हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है फेस जरूर सेम रहता है पर फिर भी कहीं ना कहीं भेद है, आप पहचान लेते हैं कि एक बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ए कौन है और बी कौन है, भेद फिर भी है, आप भेद को नकार नहीं सकते। इतनी आकृतियां आप संसार में देखते हैं, आपने पेन खरीदा ना तो इस कंपनी का पेन, इस वैरायटी का साचा सेम है तो एक जैसे पेन मिलेंगे आपको, रंग अलग हो सकता है, रंग अलग डाल दिया गया, हरा पीला नीला काला कर दिया गया, परंतु मिलेगा आपको एक जैसा। पर भगवान ने बीज दिया और बीज देने के अंदर भगवान ने आपको अलग अलग आकृतियां दी, एक आकृति दूसरी आकृति से मेल नहीं खाती, एक शरीर एक घर के अंदर अगर 7 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो आपस में शक्लें झलक मारता है, वैसा दिखता है, इसका भाई है ये, दिखता है वैसा, परंतु आकृति सेम नहीं। जैसे मैंने पेन का उदाहरण दिया कि पेन आपको सब एक जैसे दिखा, एक कंपनी का पेन, एक सांचे का पेन एक जैसा बन के निकलेगा, क्या आपको जो है जब आप देखते हैं तो क्या नाक सबके एक समान दिखाई देते हैं? नोस, जितने लोग बैठे हैं सबके नाक क्या एक समान है देखने में, दृष्टि से? काम में एक समान है, काम वही करते हैं, सांस लेना है, गंध लेना है, बहुत ठीक है, परंतु देखने में क्या एक समान दिखाई देते हैं? हरे का नाक उसके चेहरे के ऊपर भगवान ने अपने हिसाब से फिट किया है, बिल्कुल उसी के अनुसार जैसा चाहिए था वैसा फिट किया है, बिल्कुल हरेक की आकृति में अंतर है, दोनों की दो 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 जीवों के जो शरीर मिले हैं उनकी आकृति एक समान नहीं, ये विविधता है। विविध मीन्स वैरायटीज, ये वैरायटीज है। कान एक समान नहीं है, आंखें एक समान नहीं है, बाल एक समान नहीं है, आप जो है उसको एक चेहरा देखते ही पहचान लेते हो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, आपको फट से पहचान हो जाती है, पीछे से पहचान लेते हैं बहुत ज्यादा, जिसको बहुत बार देखा हो, बहुत बार मुलाकात हुई हो, तो व्यक्ति पीछे से भी पहचान लेता है कि वो जा रहा है, आकृति से उसको भास हो जाता है। भगवान कहते हैं सबका मूलभूत बीज मैं हूं, बीज मैं हूं, परंतु वैरायटी क्या है, देखिए एक ही खेत के अंदर जो है आप 10 तरह के बीज डालेंगे तो 10 तरह के पौधे उगेंगे, 10 तरह के फूल होंगे, 10 तरह के उसके फल निकलेंगे, 10 तरह की पत्तियां होंगी, 10 तरह के तने होंगे, 10 तरह की जड़ें होंगी, और उसके अंदर जो फल निकलेगा, फल का जो स्वाद है, अलग अलग बीज से अलग अलग स्वाद आ रहा है। धरती तो आपको सेम चीजें प्रोवाइड कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो उसकी सॉयल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर से जो रस है वो तो सेम है भाई, उसके अंदर मिट्टी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके वो तो सेम है, तो भेद क्या है, भेद किस चीज का है? भेद बीज का है। और बीज बना कैसे, अगर इसको हम और डेप्थ में जाएंगे तो ये जानेंगे कि भेद भगवान की शक्ति का है, कि भगवान ने उस बीज में एक शक्ति भरी है कि तेरे को इसी धरती से सामान लेना है और ऐसा फल देना है, ऐसा फूल देना है, ऐसे पत्ते देने हैं, और दूसरे बीज को शक्ति दी है कि तेरे को ऐसा फल देना है, ऐसे पत्ते देने हैं, ऐसा फूल देने हैं। पानी सेम डाल रहे हो आप, खाद सेम डाल रहे हो आप, और धरती के अंदर से भी सेम चीज है, परंतु उस बीज के अंदर जो शक्ति भगवान ने भर दी है कि एक सरसों के दाने के बराबर का बीज एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। बड़े से बड़ा कितना वटवृक्ष आपने देखा है, जड़े नीचे लटकी होती है ना, जड़े भी अल्टीमेटली जो है नीचे लटक लटके धरती में समा जाती है, तना बन जाते हैं, दिखने में तना लगता है, होती है जड़े ही उसकी, ऊपर से नीचे गिर रही है। कितना बड़ा वृक्ष देखा, हाउ बिग साइज, कितना कितना मायापुर की परिक्रमा में देखा था, कितना बड़ा था वो, इस मंदिर जितना था, तीन बंदे मिले थे, मतलब तना तीन बंदों के बराबर है, और उसकी शाखाएं और जो आगे बढ़ा हुआ है वो कितना बड़ा है, कितनी दूर तक, यहां से लेके साउथ दिल्ली बहुत दूर, यहां से चांद तक, रोड से कितनी दूर बाहर, कितनी दूर, अंदाजा बताओ, 300 मीटर, कितने होते हैं 300 मीटर, 300 मीटर यहां से लेके और जो बाहर पुल बना हुआ है उससे आगे होगा, इतना ही होगा ना, 300 मीटर, आधा किलोमीटर तो नहीं होगा पुल, चलो बदस प्राइड तक लगा लो, मतलब प्रेसिडियम स्कूल जो बना हुआ है यहां तक लगा, इतना बड़ा है, उससे थोड़ा पहले एक विलेज है नरहा, नरहा विलेज है सीतामढ़ी में, कोई है बिहार की बात कर रहा हूं, है अपने एक भक्त है बड़े मंदिर में, राजीव लोचन, राजीव लोचन है ना जो कर्मचारी है, नहीं लीलाकांत का भाई, छोटा वाला लीलाकांत के छोटे भाई है, वो हमें अपने गांव ले गए कथा कीर्तन के लिए 2 साल पहले, और यहां से 22-23 लोगों की टीम गई थी, हमने 5-6 जगह बिहार में कथा करी। तो नरहा से कोई 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर एक और गांव है, वहां का नाम नहीं मुझे मालूम है, बोले आपको वहां पे वटवृक्ष दिखा के लाते हैं। वो वटवृक्ष जो है उसकी जड़ें और उसके तने और उसकी शाखाओं का फैलाव 3 एकड़ में है। यहां से मदर्स राइट है ना, बड़ा आसान है, वहां तक पेड़ का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 3 एकड़ है, सड़क उसने बंद कर दी है, लोगों ने कच्चा रास्ता निकाला है पैदल जाने के लिए, सड़क से जा नहीं सकते, और पेड़ को काटते हैं तो गांव में आफत आ जाती है। भगवान की शक्ति है, देखिए शक्ति है कि एक छोटे से बीज से बहुत बड़ा वटवृक्ष हो गया, इतना बड़ा कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। उसके तने पे तो आप 3 आदमी क्या मिलके, 20 आदमी मिलके भी हाथ नहीं डाल सकते, इतना बड़ा तना है उसका, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं उसकी लटकी हुई। तो भगवान कहते हैं कि मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। ये नहीं, यहां चर्चा आ रही है सर्वम इदम कि भगवान ने कहा है भगवद गीता में जगह जगह पर कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है, सबका उद्गम मैं हूं, सबका मूल बीज मैं हूं, सबका बीज मैं हूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बात हुई। सब कुछ होते हुए भी भगवान किसी भी चीज से लिप्त नहीं। हम लोग जो है आसक्ति कर बैठते हैं और फिर ममता पाल लेते हैं। ममता होती नहीं होती, ये बोतल किसकी है? इनके हैं। आ गया और लोग, ये बोतल अगर ये ले जाएं उठा के तो आपको कैसा महसूस होगा? ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, मांग लेंगे वापस, मतलब मेरी है, मम मेरा है। सबसे पहले उस वस्तु में आसक्ति हुई, प्राप्त करी, प्राप्त करने के बाद ममता हो गई कि मेरी है। भगवान ने कुछ कहा है मेरा है? ममता रखी किसी में? आसक्ति है किसी से? सबके स्वामी होते हुए भी उनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं। तो यहां कह रहे हैं भगवान, कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मता परंतरम कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है। 12वें श्लोक में कहते हैं मत वेति मुझसे ही निश्चय, इस प्रकार सब कुछ मेरे से ही होता है। 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में विविध गुणों मेरे द्वारा उत्पन्न है। हर चीज भगवान ने बताई कि मेरे द्वारा है, परंतु फिर भी मैं किसी में लिप्त नहीं हूं, किसी से इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरी किसी में ममता या आसक्ति नहीं है। तो हम लोग अगर भगवान को मानते हैं, कितने लोग भगवान को जानते हैं? भगवान को जानते कितने लोग हैं और मानते कितने लोग हैं? मानते हैं ना, तो भगवान के जो शब्द हैं उनके ऊपर चलना सीखना चाहिए। मानना ये है, मानने का अर्थ क्या है कि भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, भगवान ने जो संदेश दिया है, उस संदेश का पालन करना चाहिए। क्या हम संदेश में, उपदेश में और आदेश में भेद समझते हैं? संदेश क्या कहलाता है? संदेश क्या है? इंफॉर्मेशन, मैसेज, एसएमएस। एसएमएस करते हैं, संदेश भेज दिया। अब उसका पालन करना या न करना तो जिसको मिला है उसका मर्जी है। आपने संदेश भेजा कि सुबह कथा आए 8 बजे, आए ना आए उसकी इच्छा, उसको संदेश मिला है ना। आपने उपदेश भेजा साथ में, देखो जी भगवान ने ये कहा है, जीव ये है, प्रकृति ये है, काल ये है, वगैरह वगैरह कुछ बातें दो चार एक बढ़िया से कोट लिख के भेज दिए, तो उपदेश दिया, थोड़ी बात समझ में आई। आपने आदेश दिया सुबह 8 बजे आना है, 8 बजे आना, पहले में है 8 बजे आना, दूसरे में 8 बजे आना है, तो आदेश हो गया। तो भगवान के संदेश को भगवान का आदेश मानना चाहिए। यस, ही इज इंस्ट्रक्टिंग अस टू डू लाइक दिस। तो क्या हम भगवान को मानते हैं, अर्थात क्या हम उनके उपदेश को स्वीकार करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं? नहीं, क्योंकि अभी हमने उनको सर्वस्व माना ही नहीं। अभी हमने अपने आप को उनसे भिन्न माना हुआ है, दिखने में भिन्न है, देखने में अलग अलग है, परंतु भगवान क्या कहते हैं, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है, एक्चुअल में कोई भेद नहीं है। पर अगर ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लो जी भेद नहीं है तो हम भी भगवान। लोग क्या कहेंगे, भेद नहीं है तो हम भी भगवान है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि हमारा भौतिक शरीर भी भगवान की प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति भगवान का अंश है, तो भौतिक शरीर भी भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश है, काल भगवान का अंश है, जो प्रकृति दिखाई दे रही भी भगवान का अंश है। अलग अलग दिखते हुए भी सब कुछ भगवान से ही उद्भूत होता है, भगवान ही सबके उद्गम स्थल है। इसका मतलब यह है वासुदेवम सर्वम इति। इस बात को जिसने समझ लिया वो दुर्लभ महात्मा है। सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा दुर्लभ है। हम लोग समझते नहीं, हम लोग जो है एक ही मान लेते हैं। भगवान अलग है, जेल के अंदर जेलर रोज जाता है, क्वार्टर भी मिल गया है, वहीं रहता है, वहीं ड्यूटी करता है। आपने उससे पूछा मिस्टर एक्स मिले आपको घूमते हुए किसी मॉल में, किसी पार्क में कहीं, बोले सब आपसे मिलना कब मिले, जेल में आ जाना। अरे बाबा, अरे जेल में क्यों बुला था? ये कह दिया क्या? उसने कहा जेल में आ जाना, तो हमारे मन में पहले भाव क्या आएगा, ये कैदी है क्या कि जेल में बुला रहा है, यहां कैसे घूम रहा है फिर ये कैदी है? तो अगर ये कैद में है तो मॉल में कैसे घूम रहा? बट वो कैदी ना होके कैदियों का संरक्षक है, कैदियों का देखरेख करने वाला है, कैदियों को कंट्रोल करने वाला है। हालांकि रहता जेल में है, जेल में मकान मिला हुआ है, जेल में ड्यूटी है, पर जेल में रहते हुए भी जेल वालों से भिन्न है, उनसे अलग है। तो भगवान जो है उनके बारे में चर्चा आ रही है कि भगवान हमसे, हम उनकी सृष्टि है, परंतु भगवान में और हम में भेद है, इसीलिए उनको बोला गया है, क्या बोला गया है, ईश्वर परम कृष्ण। वो सब कारणों के परम कारण हैं, हम लोग उनका अंश हैं, पर अंश होते हुए डिफरेंस क्या है, सच्चिदानंद वो है, सच्चिदानंद आत्मा है, दोनों में भेद नहीं है। पर भेद क्या है, क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का है? क्वालिटेटिवली सच्चिदानंद है, पर क्वांटिटेटिवली भेद है। कितना भेद है? तो गिरिराज स्वामी जो है लेक्चर में बताते हैं, भेद है कि समुद्र का जल, उसमें भी नमक है, और उसी जल को अगर एक गिलास में ले लिया जाए, एक चम्मच में ले लिया जाए, उसमें भी नमक है, परंतु नमक की क्वांटिटी क्या सेम है? परसेंटेज सेम हो सकती है। अगर मान लीजिए जल के अंदर जो है 50% नमक समुद्र वाले में है, तो 85% चम्मच में या गिलास वाले में है, तो क्वालिटी वाइज सेम है, परंतु क्वांटिटी वाइज उसके अंदर नमक जो है असंख्य मात्रा में है, अथा मात्रा में है, परंतु गिलास में या चम्मच में नमक जो है बड़ी लिमिटेड मात्रा में, वेरी लिमिटेड स्टफ। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है जो ये समझ जाता है, क्या समझ जाता है, कि मैं सबका मूल बीज हूं और फिर भी उन सबसे अलग। भगवान जो है वो लिप्त नहीं होते। हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोगों ने सबसे पहली बात तो आत्मा और शरीर के भेद को नहीं समझा, आत्मा को और भौतिक प्रकृति के भेद को नहीं समझा है। हम दोनों को एक ही मान बैठते हैं, मैं मतलब जो मैं दिख रहा हूं बस। हम ये नहीं समझते हैं कि दो है, एक आत्मा अलग है और एक शरीर अलग है। मैं का मतलब है मैं जो दिखाई दे रहा हूं। बस भेद न समझने की वजह से हम एक के बाद एक समस्याओं में उलझते जाते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते जाते हैं, कर्मों का भेद नहीं समझते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं, प्रकृति को नहीं समझते हैं, हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम को नहीं समझते हैं। कि हम इस भौतिक संसार के बंधन में क्यों हैं, ये भेद हमें नहीं पता लगता, क्योंकि ज्ञान नहीं है। एक रूपा जी यहां कह रहे हैं अविद्या है। हम लोग जो है अविद्या में है, इस जाल में फंसे हुए हैं कि यहीं पे चक्र काटते रहे। परंतु यहां चर्चा आ रही है कि भगवान की स्तुतियां की जा रही हैं कि आपको समझना है, बहुत सुंदर लाइन इस्तेमाल करी है, प्रत्येक वस्तु एक परमेश्वर है फिर भी प्रत्येक वस्तु उनसे भिन्न है, एकत्व तथा भेद की यही विचारधारा है। और एक लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो बिगनिंग है, पहले की जो एक लाइन है वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब भक्त तथा कथित दुख की स्थिति में होता है तब इसे भगवान का उपहार या आशीष मानता है। कितने लोग इस स्थिति को समझते हैं, हाउ मेनी पीपल। ये बहुत ही गहन अर्थ रखता है और समझ लीजिएगा सारे दर्शन का निचोड़ है ये, पूरे भागवतम का, पूरी भगवत गीता का निचोड़ है इस एक वाक्य के अंदर। हम लोग जब कुछ अच्छा कर लेते हैं तो कहते हैं मैंने किया, और जब बुरा हमसे हो जाता है, हम पे कुछ बुरा वक्त आता है तो कहते हैं भगवान कितने निर्दयी हैं, मेरा इतना बुरा कर दिया। मैं रोज मंदिर जाता था, रोज सेवा करता था, मैं भगवान का भजन करता था, मंदिर में डोनेशन भी देता था, आरतियां भी करता था, बहुत कुछ काम करता था, इतना बुरा मेरे साथ कर दिया, इतना बुरा कर दिया। भगवान जो है बड़े निर्दयी हैं, भगवान बिल्कुल दयालु नहीं। यहां जो है प्रभुपाद जी ने दर्शन का आपको मूल मंत्र दे दिया है कि जब भक्त तथा कथित दुख की स्थिति में होता है तो वे इसे भगवान का उपहार या आशीष मानता है। यही भेद है दया में और कृपा में। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, उसके पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, चलने के लिए शरीर में कोई ना कहीं गिरावट है, तो आप उसकी हेल्प करते हो। पहले करुणा जागृत होती है, फिर दया आती है, दया आने पे आप उसकी हेल्प करते हो। हेल्प इसलिए करते हो कि इस भौतिक संसार में वो थोड़ा सुख प्राप्त कर सके, इसीलिए हेल्प करते हो ना। कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दिया, खाना नहीं है खाना दे दिया, मतलब भौतिक संसार में जो उसको शरीर में दुख प्राप्त हो रहे हैं उन दुखों से छुटकारा मिल सके, थोड़े सुख की प्राप्ति हो सके। मतलब भौतिक संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए दया इस्तेमाल होती है। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और भगवान आपको प्रोवाइड करते हैं, तो भगवान आप पे दया करते हैं। और दया का फायदा क्या होता है कि आप भौतिक संसार में सुख भोग को और मजे से भोग सको और आनंद से भोग सको। अच्छा मकान एक हो गया, एक और ले लो, चलो लगाते हैं सिफारिश, लगाते हैं गुहार, एक मकान और ले लेते हैं। परंतु जब भगवान आपको प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, जो यहां चर्चा आ रही है उपहार या आशीष, जब भगवान आपको प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं तब स्मरण होता है भगवान का, अनुकूल स्थिति में स्मरण नहीं होता। सबसे ज्यादा स्मरण भगवान का प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, तो जब स्मरण ज्यादा होता है तो भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो अपने घर ले जाते हैं, अपने धाम ले जाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी है कि अनुकूल परिस्थिति अच्छी है? कौन सी अच्छी? प्रतिकूल में भगवान मिलने हैं, अनुकूल में संसार मिलना है, तो क्या चाहिए? तो प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो भगवान की कृपा है, विशेष दया है। वो भगवान की कृपा है कि आपके ऊपर कृपा करी, परिस्थितियां प्रतिकूल दी, आपको भगवान का स्मरण हुआ और भगवान मिले और आपको अपने धाम ले गए। हरे कृष्ण, श्री भगवान की।